ये आकाशवाणी है, अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी उर्वरकों पर एक मुश्त विशेष राहत पैकेज का विस्तार करने का फैसला किया है। डीएपी उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन करने की मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 3,850 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी जारी रखने का फैसला किया है। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों में 88% छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों की खुशहाली बढ़ाने के लिए समर्पित है। सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शोध पत्रों, जर्नल और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में बंद कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है। पाकिस्तान से ये भी कहा गया है कि वो 183 भारतीय मछुआरों और कैदियों में से सजा पूरी कर चुके मछुआरों और कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाए। भारत और पाकिस्तान ने कल राजनयिक स्तर पर एक दूसरे की हिरासत में मौजूद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने अपने हिरासत में मौजूद पाकिस्तान के 381 कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रख्यात लेखक, शिक्षाविद, मंत्रालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी बयां करती है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय सहयोग की सार्थक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा की। 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को कतर पहुंचे विदेश मंत्री की ये इस साल की पहली राजनयिक भागीदारी थी। उन्होंने अमरीका की 6 दिवसीय यात्रा के बाद कतर की यात्रा की। विदेश मंत्री ने अमरीका में जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के सदस्यों से मुलाकात की। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत भूतपूर्व विकास और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था। फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जायंट आज इंडियन सुपर लीग 2024-25 में विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में हैदराबाद एफसी की मेजबानी करेगा। मोहन बागान सुपर जायंट 13 मैचों में से 29 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि हैदराबाद एफसी 13 मैचों में सिर्फ 8 अंक हासिल करके 12वें स्थान पर है। ये दोनों टीमों के बीच 14वां ISL मुकाबला होगा। पिछले 5 मैचों में मोहन बागान हैदराबाद एफसी के खिलाफ अजेय रहा है और इन सभी मैचों में उन्होंने विपक्षी टीम को गोल करने का मौका नहीं दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।